नमस्कार भारत, बुधवार 16 सितंबर, मैं हूं निखिल रंजन। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए निकाले उम्मीदवारों की पहली सूची। एलजेपी सांसद ने दिया पार्टी के पदों से इस्तीफा, चिराग पासवान हैरान।
क्योंकि हम लोगों को जो कहा गया था उस तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़े से शॉक थे, क्योंकि हम लोगों की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी।
दिल्ली में डेंगू ने मुख्यमंत्री को किया परेशान, निजी अस्पतालों पर सख्ती की तैयारी। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वालों को मिलेगा ऑटो रिक्शा चलाने का लाइसेंस।
15 साल रहने के बाद जिस लोगों के लिए काम करना है उस लोगों की भाषा तो आपको कुछ ना कुछ बोलना तो आना चाहिए कि नहीं।
मंटो पर बनी फिल्म को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने किया पास, सुनवाएंगे खास बातचीत फिल्म के निर्देशक से। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। हंगरी की सरकार के देश में प्रवेश पर पाबंदी लगाने के बाद बड़ी तादाद में प्रवासी सर्बिया और हंगरी की सीमा पर रात बिता रहे हैं। हजारों लोग रोजाना शरण लेने के लिए यूरोप में दाखिल हो रहे हैं। कई प्रवासियों ने रास्ते बंद किए जाने पर अफसोस का इजहार भी किया है। सर्बिया के गृहमंत्री ने सीमा का दौरा किया और प्रवासियों की मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वे प्रवासियों को रास्ता देने के लिए हंगरी को राजी करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने उत्तर कोरिया से कहा है कि वह गैर जिम्मेदार उकसावे से बचे। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने अपने मुख्य परमाणु केंद्र को फिर से चालू कर दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने उत्तर कोरिया से कहा है कि वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करें और तनाव को बढ़ावा न दें। इससे पहले उत्तर कोरिया ने कहा था कि वे अपने परमाणु हथियारों में सुधार कर रहा है और उनका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा,
हम
फिर से दोहरा रहे हैं कि उत्तर कोरिया क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले गैर जिम्मेदार उकसावे से बचे और उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। हम उत्तर कोरिया को परमाणु संपन्न देश के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अमरीकी सेना का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अमरीका के नेतृत्व में जारी हवाई हमलों में ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया है। अमेरिका की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 3 हवाई हमलों में तेल एकत्रित करने के ठिकानों, एक बख्तरबंद वाहन और इस्लामिक स्टेट की एक रणनीतिक यूनिट को निशाना बनाया गया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर की गई पोस्ट को डिसलाइक या नापसंद करने का विकल्प देने का ऐलान किया है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वे नहीं चाहते कि इसका इस्तेमाल दूसरों के पोस्ट को नीचा दिखाने के लिए किया जाए। सीरिया के अलेप्पो शहर के सरकारी सैन्य बलों के नियंत्रण वाले इलाकों में विद्रोहियों ने बड़ी तादाद में रॉकेट दागे हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नज़र रखने वाले संगठन का कहना है कि कम से कम 38 लोग मारे गए हैं, जिनमें 14 बच्चे हैं। सीरिया के ही हाशा के शहर में एक कार बम धमाके में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पत्थरबाजी करने वाले फलस्तीनियों पर कठोर दंड लागू किए हैं। यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में फलस्तीनियों और इजरायली बलों के बीच 3 दिनों से हिंसक झड़पें हो रही हैं। एक आपात सुरक्षा बैठक में नेतन्याहू ने पत्थर फेंकने, आगजनी करने और पुलिस को निशाना बनाने वालों को सजा देने की बात कही। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव से जुड़ी खबरों को लेकर के। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बीजेपी ने अपने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें ज्यादातर वर्तमान विधायकों की सीट को बरकरार रखा गया है, हालांकि 5 मौजूदा विधायकों का नाम सूची में नहीं है। एनडीए ने एक दिन पहले सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था। उस वक्त कहा गया कि गठबंधन में सीटों को लेकर आम सहमति है और सहयोगी दलों के नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ हाथ उठाकर एकजुटता भी दिखाई, लेकिन अंदर खाने चल रही कुछ असहमतियों की आहट सुनाई देने लगी है। शुरुआत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने की है। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 40 सीटें दी है। चिराग ने सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर हैरानी जताई और कहा,
लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संख्या कभी भी मायने नहीं रखती, इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोला, जो कि ईमानदारी की भी बात है। हम लोगों के लिए एक बड़े परिपेक्ष में जब हम लोग चीजों को देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को जिताना आज की तारीख में नीतीश जी लालू जी के तथाकथित जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना हम लोगों की प्राथमिकता है, तो इसीलिए संख्या के विवाद में हम लोग कभी पड़े ही नहीं। कल जिस तरीके से संख्याओं को सार्वजनिक किया गया, वहां से हम लोगों की चिंताएं शुरू हुई, खासतौर पर हमारे कैडर में इस बात को लेकर काफी असंतोष था। मैं पुनः दोहराऊंगा, नाराजगी नहीं थी, बट हाँ, क्योंकि हम लोगों को जो कहा गया था उस तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़े से शॉक थे, क्योंकि हम लोगों की जानकारी कुछ और थी और जो संख्याएं बताई जा रही थी वो कुछ और थी। लगातार कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि माझी जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज, या कुशवाहा जी को ज्यादा सीटें मिलने से लोक जनशक्ति पार्टी नाराज। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही गंभीरता से और पूरा इसका उत्तरदायित्व तो लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को बोलूंगा, माझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य के समान है। उनके साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना और मजबूती से चुनाव लड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। संख्या या कोई भी और ऐसा कारण नहीं हो सकता है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का सोचे भी। हम लोगों की चिंताएं सिर्फ इतनी थी कि जिस आधार पर दूसरी पार्टियों को सीटें दी गई उस आधार पर सेम इक्वेशन सेम फॉर्मूला लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।
इस बीच देर रात ये भी खबर आई कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामा किशोर सिंह ने कल अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में उनकी चिट्ठी की एक प्रतिलिपि बीबीसी को भी मिली है। रामा सिंह पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक भी हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हमारे सहयोगी मनीष शांडिले ने पूरे मामले पर नजर रखी है और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछें कि माजरा क्या है। मनीष, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो आप प्लीज़ बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर।
निखिल, जैसा कि कल देर रात भाजपा ने लगभग 10 बजे अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और जो सूची जारी की उसके बाद से ही राजग के अंदर जो विरोध के स्वर हैं वो ज़्यादा मुखर हो गए हैं। जो उनकी सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसकी ओर से कहा गया है कि भाजपा ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। रालोसपा को आपत्ति इस बात पर है कि सीटों की संख्या की घोषणा भले हो गई हो सोमवार को, लेकिन जब किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ था, इस पर बातचीत जारी ही थी। और इस बीच भाजपा ने अकेले जा करके आप बातचीत ना करते हुए जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी अलग अलग सीटों पे, उससे पार्टी को नाराजगी है। अब बाकी तो जो आपने बताया कि इसके पहले जो सांसद हैं लोजपा के, उन्होंने जो इस्तीफा दिया देर रात, और हम के अंदर जो उठापटक चल रही है, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो जो उनके नेता हैं वो इस बात से नाराज हैं कि उनको सीटें कम बनी हैं। हर एक पार्टी का दावा अब बढ़ चढ़ कर था, अगर रालोसपा की बात करें तो वो 60 से अधिक सीटें मांग रही थी। और दूसरा है कि जो सीटें मिले भी हैं उसमें से जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनको अपने अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए मनपसंद सीट मिलेगी कि नहीं।
मनीष, ये जो सूची जारी की गई है 43 सदस्यों की, 43 उम्मीदवारों की, उस सूची के बारे में बताइए कि उसमें किन लोगों को जगह दी गई है, मौजूदा विधायकों को सीट मिली है कि नहीं, और क्या कुछ लोगों के नाम कटे भी हैं?
भाजपा की कल की सूची में जो पहले दूसरा चरण है उसके लिए 15 और 34 उम्मीदवारों की सूची है। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में अभिनंदन किशोर यादव, वो सबसे बड़े नाम हैं जिनकी घोषणा कल की गई दिल्ली में, नंद किशोर यादव जी। उसके अलावा आरा से अमेंद्र प्रताप सिंह हैं भाजपा के विधायक, उनका नाम है इस सूची में। और जो दो प्रवक्ता हैं विनोद नारायण झा और प्रेमरंजन पटेल, इसके अलावा रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ती रही हैं लगातार पिछले कुछ चुनावों से, तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिनका जिक्र कल की सूची में है। 31 विधायकों थे इन 43 लोगों में से, उनमें से 5 जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट भाजपा ने काटा है।
बहुत शुक्रिया पटना से मनीष शांडिले से इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामलों के बीच राजधानी में जहां दिल्ली सरकार अस्पतालों पर सख्ती के मूड में है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि जब स्थिति बिगड़ गई तब सरकार जग रही है। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का औचक मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने माना कि अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ है और लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। निजी अस्पतालों के उदासीन रवैये के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। पूरा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र की इस रिपोर्ट में।
डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों और एक और बच्चे की मौत के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अस्पतालों में मरीजों के भर्ती न करने पर कल बेहद खफा नजर आए। जीटीबी अस्पताल का मुआयना करने के बाद उन्होंने अस्पतालों पर सख्ती के संकेत के साथ नया कानून बनाने की बात कही।
अगर हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिए तो अस्पतालों की और कमी हो जाएगी, इसीलिए सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। अगले एक दो दिन के अंदर हो सकता है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स करते हैं तो हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पोररी पीरियड के लिए क्या ऐसे हॉस्पिटल्स को सरकार टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में।
इस बीच मरीजों को अस्पतालों में भर्ती न करने और अन्य शिकायतों को लेकर दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को तलब किया। इससे पहले दिल्ली में डेंगू की वजह से 7 साल के एक बच्चे की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। इस मामले में दिल्ली के 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था। बच्चे के परिजनों का आरोप था कि वे बच्चे को लेकर कई अस्पतालों में गए लेकिन सभी ने बेड की कमी होने का हवाला देकर भर्ती करने से इनकार कर दिया। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तर की कमी है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 10,000 बेड और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कहते हैं,
सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, सरकार कभी जागी नहीं, सरकार पूरी तरह से बीजेपी दूसरे इलेक्शन में, सरकार को ये लगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। 3,000 बेडेड हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल बड़े बड़े जनकपुरी का, ताहिरपुर का और दीपचंद बंधु हॉस्पिटल जो तैयार पड़े हुए हैं 7-8 महीने से, उनमें इतनी बेड की कैपेसिटी है, उसमें कुछ कर नहीं रहे। जो डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल में, एमएलएस को ऑफिस बना रहे हैं, तो कहाँ से बेड आगे बढ़ेंगे। कितनी सारी एम्बुलेंस जंग खा रही है, जंग के आड़ में जो पेशेंट को लाने ले जाने के लिए है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग।
दिल्ली में अब तक डेंगू के 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजधानी से लगे गाजियाबाद में भी कई मामले सामने आए हैं और लगभग ऐसी ही समस्या वहाँ भी है। दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए सभी सरकारी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के नेता और मंत्री दिवाकर राउत ने कहा है कि 1 नवंबर से राज्य में ऑटो रिक्शा के नए परमिट उन्हीं लोगों को जारी किए जाएंगे जो कि मराठी भाषी हैं। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चलाने वालों का एक बड़ा हिस्सा मराठी भाषी नहीं है। ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र में आकर काम करते हैं। इससे पहले जनवरी 2010 में भी सिर्फ मराठी भाषियों को ऑटो परमिट दिए जाने का मुद्दा गरमाया था। समीर आत्मज मिश्र ने इस बारे में दिवाकर राउत से बात की है।
यहाँ किसी को भी रिक्शा का लाइसेंस मिल सकता है, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई प्रांत का हो, कोई भी हो। उसके लिए अनिवार्य है 15 साल इस राज्य में रहना, यह अनिवार्य है। 15 साल रहने वाले को रिक्शा चलाना होगा तो यहाँ के लोगों को लेके जाना आना है, तो उनकी किम्मा बोली भाषा तो जाननी चाहिए, इतना ही है उसमें। और लोगों के लिए काम करना है तो उसको इतनी भाषा तो आनी चाहिए, उसको कुछ साहित्यिक नहीं बनना है हमारी भाषा में।
ये जानना चाह रहे हैं कि जो 15 साल रहने की अनिवार्यता है ये पहले से,
ये तो सब जगह है, ये अनिवार्य तो सब जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है। जो 15 साल रहते हैं वो डोमेस्टिक कहा जाता है, उस प्रांत का कहा जाता है। तो अगर 15 साल रहने वाले को लोगों के साथ व्यवहार करना होगा तो व्यवहार की भाषा तो उतनी आनी चाहिए।
ऑटो चलाने वाले जो लोग होंगे जिनको लाइसेंस मिलेगा तो भाषा तो पहले भी समझते रहे होंगे, अचानक ही क्या
पहले से ही है, नया कुछ नहीं है।
नहीं, ये भाषा जानने वाली बात अचानक कैसे आ गई?
बताया ना, वो नया कुछ नहीं है। मैं आपको ही पूछता हूँ, अगर 15 साल रहने के बाद जिस लोगों के लिए काम करना है उस लोगों की भाषा का तो आपको कुछ ना कुछ बोलना तो आना चाहिए कि नहीं?
दिवाकर जी, आप कह रहे हैं नया कुछ नहीं है, लेकिन ये भाषा वाला जो मामला है ये तो नया ही है ना?
कोई मामला नहीं, अभी हाईकोर्ट की भाषा भी उसी राज्य की भाषा हाईकोर्ट की होनी चाहिए।
हाईकोर्ट की भाषा पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऑटो चलाने वाले को
बात, आपको क्या बताऊँ। देखो, आप ऐसे जिद से पढ़े तो अगर ना समझ करके ना समझना नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
आपसे समझने की ही बात कर रहे हैं,
ये बात ये गलत बात कर रहे हैं आप
जी।
मेरे राज्य में 15 साल जो रहता है उसको ही परमिट मिलेगा, ये तो पक्का है।
ठीक है,
15 साल रहने वाले को जिन लोगों के लिए परमिट दे रहा हूँ उनकी बोली भाषा तो आनी चाहिए, उसमें गलत क्या है?
आनी चाहिए, लेकिन उसको अनिवार्य बनाने वाली जो बात है उस
तो
पर
अनिवार्य है ही, पहले से है।
पहले से अनिवार्य नहीं है ना, ये पहले से अनिवार्य
बनाएंगे भाई, क्यों नहीं बनाएंगे?
मराठी भाषियों को ऑटो परमिट दिए जाने के मामले पर बात कर रहे थे शिवसेना के नेता और मंत्री दिवाकर राउत से समीर आत्मज मिश्र। और अब रुख करते हैं हंगरी का। यूरोप में हंगरी की सरकार ने सर्बियाई सीमा पर बाड़ लगाकर प्रवासियों का रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रवासी सीमा पर फंसे हुए हैं। सर्बिया के मंत्री जब इस बारे में हंगरी के अधिकारियों से बात करने गए तो उन्हें भी बाड़ के दूसरी तरफ से होकर के ही अधिकारियों से बात करनी पड़ी। क्या कुछ हो रहा है वहाँ, इस बारे में जानकारी जुटाई है हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने। सुनिए ये रिपोर्ट।
हंगरी और सर्बिया की सीमा पर बेहद मुश्किल हालातों में अटके प्रवासी सीमा पर लगाई गई कटीली दीवार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। हंगरी के अपनी सीमा में प्रवेश पर रोक लगा देने के बाद सैकड़ों प्रवासी सर्बिया में ही रात गुजार रहे हैं। प्रवासियों ने जर्मनी की चांसलर अंगेला मेयरकल के नाम की तख्तियां पकड़ रखी हैं और उन्होंने यूरोप शर्म करो के पोस्टर भी थाम रखे हैं। हंगरी ने मंगलवार को सर्बिया से लगी अपनी सीमा को कंटीली तारों से सील कर दिया था और प्रवासियों के हंगरी में दाखिल होने पर पाबंदी लगाते हुए कठोर कानून लागू कर दिए हैं। हंगरी और सर्बिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को भी सरकार ने सील कर दिया है। सर्बिया के गृह मंत्री नेबुसा स्टेफानोविच ने सीमा पर पहुंचकर सीरियाई शरणार्थियों से मुलाकात की और कहा कि उनका देश मदद करेगा। उन्होंने कहा, मैं कल सुबह हंगरी के अधिकारियों से बात करूंगा, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। हम जितना मुमकिन होगा उतना उन्हें खुला रास्ता देने की कोशिश करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने परिवारों से मिल सकें। कुछ प्रवासी पहले ही आगे निकल चुके हैं, इसलिए मैं जितना संभव हो सकता है हंगरी के अधिकारियों को मनाने की कोशिश करूँगा ताकि प्रवासी अपना सफर जारी रख सकें। इसी बीच हम प्रवासियों को भोजन, दवाएं, पानी मुहैया कराएंगे और जितना हो सकेगा मानवीय मदद उन्हें देंगे। वहीं चेक गणराज्य ने भी ऑस्ट्रिया से देश में दाखिल हो रहे प्रवासियों की जांच के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि ऐसा चेक गणराज्य के रास्ते जर्मनी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। चेक गणराज्य का यह भी कहना है कि ये सुरक्षा चौकसी अस्थायी है। मध्य पूर्व में जारी संघर्षों से प्रभावित हजारों लोग रोजाना यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूरोप में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चला है। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा अखबारों पर नजर डाल चुके हैं। बताइए दिलनवाज, क्या है आज अखबारों में?
जी, आज फिर अखबारों की सुर्खियां दिल्ली में जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है उसी से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली सरकार अस्पतालों पर सख्ती लागू,
ज्यादा गंभीर हो गई है।
जी जी जी, जनसत्ता लिखता है, बेबस सरकार, निष्ठुर अस्पताल, शर्मनाक लापरवाही से हुई एक और मासूम की मौत। और नवभारत टाइम्स लिखता है, निजी अस्पतालों का इलाज होगा। दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों को अपने अंदर लेने की चेतावनी दिल्ली सरकार ने दी है और इस पर नया कानून भी ला सकती है। जिक्र करूंगा द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक एक ग्रेनाइट क्वेरी में मानवों की बलि दिए जाने का संदिग्ध मामला सामने आ सकता है। 5 शव वहां से बरामद किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक PR पलाने चिमी जो वहां खनन के बड़े कारोबारी हैं, उन पर आरोप लगे हैं कि हर बार जब भी वो अपना व्यापार बढ़ाते वहां पर वो मानव बलि को अंजाम देते हैं। ऐसे आरोप इस रिपोर्ट के मुताबिक लग रहे हैं। दैनिक भास्कर में एक बड़ी रोचक खबर है पहले पन्ने पर। इस खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चपरासियों के लिए 368 पदों के लिए भर्ती खोली गई और इसमें 23 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें 2 लाख से ज़्यादा बीटेक ग्रेजुएट और 255 PhD धारक ने भी आवेदन किया है।
बेरोजगारी का ये हाल है
जी। अभी कुछ दिन पहले पटवारी की भर्ती में 27 लाख लोगों ने आवेदन किया था। और संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी रखने वाले 4 भारतीयों को वापस भेजा है। ये चारों केरल के हैं। इसी खबर पर
और भी शायद भारतीय आने वाले हैं, ऐसा ऐसी भी कुछ खबर
नहीं नहीं, इससे पहले 2 को हिरासत में,
को पहले
हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था और इन 4 को संयुक्त अरब अमीरात ने वापस भारत भेजा है। और एक और खबर है जो अखबारों में है, बहुत पहले एक तंदूर हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसके आरोपी को पैरोल पर बाहर आ गए हैं वो, ये खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। नमस्कार, भारत बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आप आज निखिल रंजन के साथ हैं और अब सुनते हैं वो रिपोर्ट जो आई है बिहार से। बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर अररिया जिले में मिनी पंजाब भी बसता है। जिले के खास हलहलिया, नयानगर, खवासपुर, परमानंदपुर, माणिकपुर और मलजत्ता गांव में लगभग 200 ऐसे दलित महिला पुरुष हैं जिन्होंने सिख मत को अपना लिया है। ये सभी मूल रूप से ऋषिदेव यानी मांझी समुदाय से आते हैं। नीरज सहाय वहां गए थे और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
अररिया जिला के दलितों ने अपनी मर्जी से पहले पंजाब जाकर रोजी रोटी का रास्ता खोजा, फिर वहां प्रचलित सिख धर्म को अपनाकर अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान भी खुद ही ढूंढ लिया है। जिले के खास हलहलिया गांव में फूस के श्री अकाल तख्त सर साहब गुरुद्वारा को दिसंबर 1985 में पक्की शक्ल मिली। शुरुआत सरदार नरेंद्र सिंह ज्ञानी ने की थी। पंजाब में करीब 10 साल तक रोजी रोटी के लिए मशक्कत और बिहार में जातीय भेदभाव से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने खालसा पंथ अपना लिया। गांव लौटे तो सबों को इस धर्म के प्रवचन और सत्संग भी सुनाए। 80 के दशक में शुरू हुई इस बदलाव की साक्षी अब इस गांव की तीसरी पीढ़ी भी बन रही है। पंजाब के खन्ना शहर में करीब 3 साल काम कर चुके 35 साल के सरदार प्रमोद सिंह बताते हैं कि यह महादलितों का गांव है। तख्त श्री हरिमंदिर साहब पटना सिटी की मदद से यहां पक्का गुरुद्वारा बना। ग्रंथी का काम वीरेंद्र सिंह यानी कर रहे हैं। उनके अनुसार
ये गुरुद्वार का स्थापना 1685 में हुआ खास हललिया। इस गुरुद्वारे का नाम श्री अकाल सर साहेब है। यहाँ जो पहले सिख बने थे उसका नाम है नरेंद्र सिंह ज्ञानी। वह पहला सिखों का वह अगवा था और यहाँ जो गुरुद्वार बने हैं ये यहाँ सिर्फ महादलितों का गांव है जिस गांव में गुरुद्वार है। और 20 साल से गुरुद्वार चल रहा है। ग्रंथी के काम जो है कि वीरेंद्र सिंह ज्ञानी कर रहे हैं। इस गुरुद्वार को ऊपर उठाने के लिए अमृतसर में भी हम लोग दरखास्त दिए हैं।
लेकिन शुरुआत इतनी सहज नहीं थी। गांव के सरदार रूप सिंह के अनुसार पहले परेशानी होती थी लेकिन अब सब ठीक ठाक है।
कुछ से कुछ बोल देता था कि यह चाकू पहन के आ गया है, तो बहुत दबाव डालते थे कि यह चाकू यहाँ नहीं चलेगा, यह क्या है, यह जो है कि ये सही नहीं होता है। यहाँ जो है कि अपना गुरु नानक देव जी महाराज का जनवरी में जो गुरु जयंती मनाया जाता है, उनके बाद जो है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बैसाखी मनाया जाता है हर एक साल, तो बहुत धूमधाम से यहाँ का संगत भी साथ देते हैं, संगत भी श्रद्धालु हैं। यहाँ करीब जो है कि 25 खालसा है। उनके बाद जो है कि 6 नंबर वार्ड में वहाँ भी 15 सिख हैं, करीब 200 का संख्या में यानी यह सिख धर्म से जुड़े हुए हैं।
गाँव के सरदार संजय सिंह सिख धर्म अपनाने के पक्ष में अपनी दलील देते हैं।
हमारे यहाँ 7 जात हिंदू में बराया जाता है, इसीलिए हम सिख धारण किए कि उसमें जाति की भावना नहीं है। एक पंगति में लंगर छकते हैं, एक बराबरी, करोड़पति हो चाहे गरीब हो, अपना लड़का लड़की के शादी करते हैं, बराबरी के दर्जा में बैठते हैं उठते हैं, कोई छुआछूत की भावना नहीं है।
जाहिर है इनके मूल गांव खास हलहलिया में आपसी सहयोग से बना गुरुद्वारा जैसे जैसे सुविधा संपन्न हो रहा है वो यहां मत्था टेकने वाले नव सिखों का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
उर्दू के जाने माने लेकिन विवादित लेखकों में से एक थे सादत हुसैन मंटो। मंटो की कहानियां अभी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, हालांकि उनकी बेबाक कलम को नापसंद करने वाले भी कम नहीं। अब मंटो की जिंदगी को पर्दे पर उतारने की कोशिश हुई है। हाल ही में मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म सेंसर की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में रिलीज हुई। आने वाले दिनों में ये फिल्म भारत में भी रिलीज होगी, ऐसी संभावना है। बीबीसी उर्दू के हमारे सहयोगी वसतुल्ला खान ने फिल्म के निर्देशक और मंटो का किरदार निभाने वाले सरमद सुल्तान खोसट से बातचीत की है। आइए सुनिए ये बातचीत।
अच्छा, ये जाहिर है कि खराज तहसीन तो है एक बहुत बड़े आदमी को, लेकिन फिल्म में सिर्फ खराज तहसीन पे तो नहीं चलती, पैसा लगता है, पैसा वापस भी आने की एक तवक्को होती है, कमर्शियल तकाजे कितने मद्देनजर रखे गए?
2015 में जहां हम खड़े हैं, फिल्म अब लोग पुराने हर फॉर्मूले को रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर आप उनको आइटम सॉन्ग देते हैं तो वो एतराज करते हैं, ये हिंदुस्तान जैसी फिल्म क्यों बना रहे हैं। आप अगर उनको बहुत हार्ड को रियलिस्टिक देते हैं फिल्म, तो कहते हैं ये ईरान जैसी फिल्म क्यों बना रहे हैं।
जब मंटो की जिंदगी में कहीं आइटम सॉन्ग फिट तो हो सकता था?
यकीनन हो सकता है जी, मंटो साहब ने तो मतलब वो एक एक कहानी के अंदर मतलब ऐसा ऐसा आइटम मौजूद है दैट वे। बट तकाजों के हवाले से मैं यही कहूंगा जी, एक तो कॉन्शियस एफर्ट थी कास्टिंग के हवाले से। मुझे ये लगा कि हम मंटो साहब के काम को जब भी डिपिक्ट करते हैं, हम उसको एक खास तरह के एक 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 शक्ल से मंसूब करते हैं,
क्लीशेड।
हाँ जी, मुझे उस पे एतराज भी है कि मंटो को जब भी अप्रोच किया गया, उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश भी कम की गई।
सही,
उनको ड्राई रखा जाता है या चीजें वो पिक की जाती हैं जो एक डिस्टेंस बन जाता है। और सेंसरशिप के अलावा आई थिंक एक एस्थेटिक का सवाल भी आ जाता है। लिखा हुआ लव्स और देखने वाली तस्वीर बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। पैसा उस तरह से बहुत ज्यादा ना प्रोड्यूसर्स के जहन में है कि जी हमने वापस लेकर आना है सारा। और दूसरा, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव फिल्म नहीं है। और दूसरा एक चीज मुझे लगती है कि अगर मंटो साहब पे फिल्म बने और उसमें सिर्फ मकसूद ये हो कि ये पैसा वापस आ जाए, तो ये मंटो साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है।
और अब सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय खिलाड़ी कोरिया ओपन में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। कल मिश्रित युगल वर्ग में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तरुण कोना और एनसीकी रेड्डी की जोड़ी पहले दौर में चीन के झांगनान और झाओ युनलिन से 21-11, 21-10 से हार कर बाहर हो गई। आज कोरिया ओपन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में दो बार की कांस्य पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल थाईलैंड के रत्चानोक इंतनोन का सामना करेंगी। महिला एकल वर्ग में इस बार सिंधु के रूप में ही भारत की एकमात्र चुनौती है, क्योंकि साइना नेहवाल कोरिया ओपन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। पुरुष एकल वर्ग में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पी कश्यप को 8वीं वरीयता दी गई है। उनका सामना हांगकांग के वेई नान से होगा। कोरिया ओपन में भारत के श्रीकांत को 4थी वरीयता दी गई है और उनकी पहली भिड़ंत चीन के तियान हाउवेई से होगी। इनके अलावा एचएस प्रणय 7वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चाउ तियन चेन का सामना करेंगे, तो अजय जयराम 6ठी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से पार पाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से प्रणय और जयराम के लिए शुरुआती बाधा को पार करना बेहद मुश्किल है। महिला युगल वर्ग में प्रदन्य गडरे और एनसीकी रेड्डी की जोड़ी जापानी जोड़ी का सामना करेगी। उधर भारतीय खिलाड़ियों ने दिल्ली में शुक्रवार से होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जहां उनका सामना दुनिया की शीर्ष डेविस कप टीम चेक गणराज्य से होगा। कुछ दिन पहले अमरीकी ओपन में मिश्रित युगल का खिताब जीतने वाले लिएंडर पेस भी आज भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे। दूसरी तरफ थॉमस बर्डिच चेक टीम में नहीं है, इसके बावजूद भारतीय डेविस कप टीम के कोच जीशान अली चेक टीम को बेहद मजबूत मानते हैं।
इसका फायदा डेफिनेटली हमको हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बर्डिच नहीं भी आ रहे तो उनके बाकी जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर हैं, उनकी रैंकिंग अगर आप देखें तो एक प्लेयर 35 इन द वर्ल्ड है और दूसरा प्लेयर जो है वो 70 इन द वर्ल्ड है, तो ऑब्वियसली उनकी रैंकिंग हमारे से बहुत ही अच्छी है। और बर्डिच नहीं भी आने से ये मैच जो है हमारे लिए बहुत ही टफ रहेगा।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
हंगरी के अपनी सीमाएं सील करने के बाद बड़ी तादाद में प्रवासी सर्बिया हंगरी की सीमा पर रात बिता रहे हैं। अमरीकी सेना का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अमरीका के नेतृत्व में जारी हवाई हमलों में ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू विमानों ने पहली बार हिस्सा लिया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर की गई पोस्ट को डिसलाइक या नापसंद करने का विकल्प देने का ऐलान किया है। सीरिया के एलेप्पो शहर के सरकारी सैन्य बलों के नियंत्रण वाले इलाकों में विद्रोहियों ने बड़ी तादाद में रॉकेट दागे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पत्थरबाजी करने वाले फलस्तीनियों पर कठोर दंड लागू किए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। दिलनवाज पाशा और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।